Market Center. Market Center. Market Center. Market Center. Market Center. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमरीश.
और पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डेंग.
Thank you, Amrish. Yes, the headlines first. Domestic benchmark indices snap 5 days losing streak. Sensex gains 0.1%. Nifty adds nearly 2%. Reserve Bank of India brings back 100 tons of gold from UK's vault. And real GDP to grow by 8.2% in 2023-24, says Ministry of Statistics and Program Implementation.
घरेलू शेयर बाजारों में 5 दिन से चली आ रही गिरावट का क्रम आज टूटा. सेंसेक्स 0.1% और निफ्टी लगभग 2% बढ़ा. भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन के वॉल्ट में रखा 100 टन सोना भारत वापस लाने का फैसला किया. और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक जीडीपी की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में 5 दिनों से चला रहा गिरावट का क्रम आज टूटा और सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई. अन्य देशों से आ रहे नकारात्मक संकेतों और लोकसभा चुनाव के परिणामों के अनुमानों के बीच बाजारों में गिरावट चल रही थी. सुबह के समय कारोबार शुरू होने पर बाजार में तेजी थी, लेकिन बाद में गिरावट का रुख दिखाई दिया. बावजूद इसके बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 75 अंक यानी 0.1% की बढ़त के साथ 73,961 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक यानी 0.19% बढ़कर 22,531 अंकों पर बंद हुआ. बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.06% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.76% बढ़कर बंद हुई.
The domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended in green today, snapping the 5 straight session decline driven by negative global sentiments and speculations of Lok Sabha election results. The markets opened higher in early trade and remained positive despite sharp drop at the closing bell. The BSE Sensex added 75 points or 0.1% to close at 73,961. The NSE Nifty was up 42 points or 0.19% to 22,531 at the closing bell. In the broader market at the BSE, the mid-cap index inched up 0.06%, while the small-cap index up 0.76%. 15 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. Tata Steel 1.8%, Bajaj Finance 1.3% and HDFC 1% were the top 3 gainers today. On the other hand, the 3 major laggards were Nestle India 2%, TCS 1.77% and Maruti 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors logged gains. The top 3 gainers were the utilities sector 2.1%, realty sector 2% and power sector 1.8%. Conversely, information technology 1%, tech sector 0.84% and healthcare sector 0.55% were the 3 laggards. The overall market breadth was negative. Out of 3,915 companies, the shares of 1,820 companies advanced and 2,004 declined and 91 remained unchanged. So Vishal, we see domestic गुड फैक्टर्स, यस लेट्स हैव अ लुक एट द
रुपए. रुपए का हाल भी जान लेते हैं. घरेलू इक्विटी बाजार में उथल पुथल और विदेशी फंड्स की निकासी लगातार जारी रहने से रुपया आज 20 पैसे कमजोर हुआ. एक डॉलर की कीमत 83.49 रूपये दर्ज की गई. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक 0.02% की गिरावट के साथ 104.64 पर आ गया.
So after 5 straight sessions of decline, Vishal, now we see that the positive domestic factors are overriding the negative global sentiments.
Well, we can summarize that, and there's a saying, Lalimanji, that all is well that ends well. So it looks like, you know, the week has ended well on a positive note. But if you do a summary of the entire week's sessions, then both the Sensex and the Nifty have shed approximately 2% each. The good part here is that on a Friday morning, it all started positively with a lot of positive aspects. But as the day progressed, you know, there was a bit of a volatility, and the Sensex ended up, by gaining around 75%, as you pointed out. The cues, clearly, domestic cues, seemingly the GDP data, which is expected, that is something which looks like a positive cue. Mm-hmm. Then when we look at the international cues, of course, they doesn't seem to be that too positive. But in this kind of volatility in the market, and which is pretty much expected during the elections, if you look at historically, you know, this is not the first election when we have witnessed volatility in the market. In previous elections also, as the elections draw, to a close, and as the exit poll and the result day comes nearer, there is a bit of a volatility in the market, and that's something which this week also the Indian stock market has experienced.
लेकिन विशाल, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो ऊपर नीचे कर रहा है शेयर बाजार, और 75,000 को पार कर गया, लेकिन फिर इस तरह से 73-74 ये सब चल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो उथल पुथल है, ये अभी बाजार में 4 तारीख तक इसी तरह से जारी रहेगी कि हम कोई अभी स्टेबिलिटी की उम्मीद लगा सकते हैं?
देखिये, 4 तारीख तक जारी रहेगी, और हो सकता है कि 4 के बाद जो 1 या 2 दिन और हों उसमें भी कुछ इसका असर देखने को मिले, क्योंकि जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो मार्केट में पोजीशंस ली जाती हैं, और उन पोजीशंस का जो है किस तरह से असर मार्केट पे पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर उसमें और कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है. और अगर हम ऐतिहासिक डेटा की तरफ एक नजर डालें, जैसा कि मैं लालिमा जी से पहले कह रहा था कि जब जिस दिन चुनावी नतीजे आते हैं उस दिन थोड़ा सा स्विंग मार्केट में जरूर देखने को मिलता है, हालांकि वो अगले 1 या 2 मैक्सिमम 3 सेशन में वो सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट को एक डोमेस्टिक स्ट्रांग डोमेस्टिक क्यू किसी न किसी तरह से मिल रहा होता है. और इससे पहले कि चुनावी नतीजों वाले क्यू की बात करें, चुनाव नतीजे आने से पहले 2 और क्यू मार्केट को जो है सोमवार को जब मार्केट खुलेगी तो उससे पहले मिल जाएंगे. वो होगा एक एग्जिट पोल्स, और दूसरा होगा जीडीपी डेटा, क्योंकि जीडीपी डेटा के पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, जिस तरह के एक अनुमानित फिगर्स, जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से लगभग 8% के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी डेटा रह सकता है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तुलना करें तो काफी अच्छी खासी बढ़त मानी जा सकती है. तो ये डोमेस्टिक क्यूज की बात है, और अगर इंटरनेशनल क्यूज की बात करें तो वहां थोड़ा सा बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है. जो यूएस के इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आने हैं, या फिर फेड पर वो जहां वो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, अब उसको ट्रांसलेट पॉजिटिव क्यू की तरफ करें तो इधर क्या मिक्स रिएक्शन मिलता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल फेड की बात नहीं है, केवल यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात नहीं है, उनका असर बाकी जो एशियाई बाजार हैं उन पर किस तरह से पड़ रहा है, बाकी जो यूरोपीय बाजार हैं उन पर किस तरह से पड़ रहा है, और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो एक असर जरूर पड़ेगा. लेकिन इस वक्त भारतीय बाजार को देख के लगता है कि ज्यादा निर्भर भारतीय बाजार क्यूज के मामले में जो डोमेस्टिक क्यूज हैं उन पे है, और डोमेस्टिक क्यूज में सबसे बड़ा इवेंट चुनाव है और दूसरा जीडीपी के आंकड़े. लेकिन अगर हम बाजार के फंडामेंटल्स की दृष्टि से अगर देखें तो बाजार में आपको क्या लगता है कि कितने फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और कितना स्टेबल है बाजार अभी?
देखिए, स्टेबिलिटी पर कोई खतरा मंडराता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर देखें जो कि जिसे बेस माना जाए, हर बार जब एक बेस की बात होती है तो उस बेस को मेंटेन किया है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, और उसको ब्रीच करके अगर ऊपर गए हैं तो वो जो ऊपर का लेवल है उसे भी मेंटेन करने की कोशिश हुई है। जो निचला स्तर होता है जिसे हम लोअर लेवल बोलते हैं, वो अगर ब्रीच भी हुआ है तो उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हुई है, और बिकवाली या फिर खरीदारी शेयर बाजार में एक एक आम प्रक्रिया है, वो तेज भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, और खासतौर पर अगर बाजार को वॉलेटाइल स्ट्रेटजी में गिना जाए तो थोड़ा सा जो है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर थोड़ा सा मई के डेटा की तरफ ही नजर डालें तो मई के पहले हफ्ते में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन वो जो स्पीड है वो बरकरार रही, उसमें वो बढ़ोतरी की जो स्पीड है वो उस गति से आगे नहीं बढ़ी जिस गति से बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी या जिसका थोड़ी सी आशंका की जा रही थी, वो देखने को नहीं मिली।
लेकिन अगर हम देखें विदेशी फंड्स जिस तरह से पैसा निकाल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट शेयर बाजार पर है ही, आज रुपए में भी हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया, तो ये कितना चिंता का विषय?
मैं इसे बहुत चिंता का विषय नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप एफआईआईज की बात कर रहे हैं, अगर वो बिकवाली कर रहे हैं तो डीआईआईज खरीदारी भी कर रहे हैं, तो एक तरह से वो बैलेंस बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सभी डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं या सभी एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। और मोटे तौर पर अगर रुपए की सेहत की बात की जाए तो रुपए में जितनी गिरावट आज दर्ज हुई है, अगर पिछले कुछ हफ्तों की तरफ थोड़ा सा नजर डाल के देखें तो शायद इससे ज्यादा गिरावट कुछ अच्छे दिनों में भी दर्ज हुई है, जब सेंसेक्स ने शायद काफी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन रुपया जो है थोड़ा सा नीचे गिरा हो।
वी सी अ स्टेबल रूपी रादर देन अ वीक रूपी, सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द रूपी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अ वीक रूपी, यू सी?
वेल इंडीड ऑफ कोर्स, बिकॉज इंटरनेशनली यू नो व्हाट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट नाउ डेज इज डिफरेंट करेंसीज होल्डिंग आउट फॉर देमसेल्व्स, इट इज नो लॉन्गर यू नो द डॉलर्स हेजेमनी इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड दैट इज समथिंग विच यू नो मेनी अदर economies, developed economies, including Russia, have been trying to make sure of. And therein lies the opportunity for the Indian rupee to make its mark. And policy-wise, as well as, from the central bank's, measures which it has taken, it looks like we are on the right path, slow but steady.
RBI has recently said that it will promote the use of the rupee and other domestic currencies in the Asian Clearing Union, ACU, mechanism. And so this will enhance the role of the rupee globally anyways. And this will also improve the money coming from, the direct investment, foreign direct investment as well.
Well, yes, indeed, and this is the INR trade which you're talking about, Lalima ji, is a step which has been thought about, talked about, discussed for quite some time now, the interesting part here is that the timing from the RBI to go ahead and implement this at a time when it looks like that internationally, the Indian rupee can hold out on its own. That's one. Two, we are having, dealings with other big economies, other big developed nations in Indian rupee as well. So this is one more step, as I was saying, slow but steady, giving a push to the Indian rupee slowly on the global stage. Making it available there and putting those mechanisms in place wherever required, and ensuring INR trade is a part of that entire puzzle, part of that entire story.
Yes, also the special accounts like the special non-resident rupee and special rupee vastra accounts, all this will also enhance people sending in money from, I think in the US, Indians have the largest community which send a lot of money to India.
That ensures that, all the liquidity operations are in sync with the monetary policy. Mm. Because right now, when we see, if you go a little back in the past, say perhaps 10 years, 20 years ago, when the monetary policy was announced, announced, we need to look at it in, you know, different perspectives, what impact it will have on domestic aspects, what impact it might have on the remittances and then the, you know, Indian interests outside, Indian rupees, you know, stand on the global stage. All these steps will bring all these aspects into a sync, wherein, you know, one holistic monetary policy can be seen as having an impact on all these aspects.
So just as we see, as a closing to this discussion on rupee, just as we see the status of Indian passport and the Indian flag going up, we see the Indian rupee status also going up.
Well, that looks like, and you know, few other aspects here are the digital currency, yeah, and all those steps which are being taken by the RBI.
Absolutely.
As I was saying again, you know, I'm emphasizing it, slow but steady, because these are very, very serious issues. These involve a lot of, you know, aspects which need to be put in place, which need to be cleared with, you know, different agencies involved as well on the international stage also. So these are slow steps, but important steps.
Right.
विशाल जी, अभी ये इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में आपको क्या लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ये मौका है इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्ट करें या थोड़ा सा कॉशस अप्रोच रखें?
देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिहाज से अमरीश जी, जब भी कोई ये पूछता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, तो इसमें एक बड़ी खास बात है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को कितना भी कुछ भी बताइए, रिटेल इन्वेस्टर अंततः करता वही है जो उसके मन को अच्छा लगता है, और मन को क्या अच्छा लगता है वो फिर इमीडिएट क्यूज पे निर्भर करता है. हालांकि ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू लुक एट हाउ द रिटेल इन्वेस्टर शुड लुक, यू नो, शुड प्लान द वीक अहेड, एक सीधा सा फलसफा जो मैं समझ सकता हूं वो ये कि वॉलिटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट में, उससे प्रभावित ना हो, और आप जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स को पढ़िए, उनको ध्यान से समझिए, और फिर उसके बाद उस पर अपना पैसा लगाइए, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए हार्ड अर्न्ड मनी है. और अगर आप सही रिसर्च करके, सही तरीके से समझ के किसी स्टॉक पे अपना पैसा लगाते हैं, तो मेरा पूरा भरोसा है कि चाहे मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी भी हो, लेकिन अंततः उसका अच्छा नतीजा जरूर रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा.
राइट.
और एशिया के अन्य बाजारों और यूरोप का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के पांच प्रमुख शेयर बाजारों में से तीन में आज तेजी का रुख दिखाई दिया. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1.14%, सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 0.30% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.04% बढ़ा. दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.16% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.83% की गिरावट दर्ज की गई. यूरोप में दिन के कारोबार के दौरान लंदन शेयर बाजार को छोड़कर सभी में गिरावट चल रही थी. लंदन शेयर बाजार के फुटसी में 0.25% की बढ़त बनी हुई थी. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.18% और फ्रांस के कैक में 0.13% की गिरावट दिखाई दी. तो रैया जी, आप क्या कहेंगे, जो एशिया के बाजारों का हाल लगातार ही, और बल्कि यूरोप में भी लगातार ही गिरावट का रुख बना ही हुआ है, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है?
देखिए, जो विदेशी बाजार हैं, मैं जैसा पहले कह रहा था, विदेशी बाजारों की बात की जाए अमरीश जी, तो सीधे तौर पर वो एक एशिया या यूरोपीय बाजार हैं, वो दो जगह से क्यूज लेते हैं. एक तो जो यूएस स्टॉक मार्केट्स की सिचुएशन है, वहां जो स्टैंड लिया जाता है नंबर एक, और नंबर दो वो एक दूसरे से भी क्यूज लेते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका काफी अच्छा खासा असर पड़ता है, और खासतौर पर यूरोपीय बाजारों के लिहाज से देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उतनी पॉजिटिव नहीं है, चाहे हम जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी तरफ अगर नजर डालें, तो इसका सीधा असर यूरोपीय देशों पर पड़ता है, उनकी इकोनॉमी पर पड़ता है, तो वहां वो पॉजिटिव क्यूज नहीं माने जा रहे हैं. उसका एक थोड़ा सा असर कई एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. निकेई की बात करें तो निकेई को हम पिछले कई महीनों से देखते जा रहे हैं. निकेई अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश में जरूर लगा हुआ है, लेकिन जापान की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी किस तरह से ग्रोथ होती है, उसमें किस तरह का स्टैंड लिया जाता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यूएस फेड से और खासतौर पर यूएस इकोनॉमी से अभी तक तो कोई बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं है, तो उनका भी एक सीधा असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये बार बार हमें हर हफ्ते या हर रोज भी अगर हम उस पर नजर डालने की कोशिश करें तो एक मिक्स सिग्नल या मिश्रित सिग्नल जिसे कहा जाए एशियाई और यूरोपीय बाजारों से मिलते हैं, कहीं पलड़ा भारी होता दिखेगा तो कहीं पलड़ा कमजोर होता नजर आएगा।
जी
ऑलराइट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग्स बैक 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वॉल्ट ऑफ यूके टू इंडिया। दिस इज अ मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द आरबीआई एज इट विल नाउ होल्ड most of its gold in its own vault. These changes have significant implications for India's economic sovereignty and global market dynamics. Most countries keep their gold in the vaults of the Bank of England or other such location and pay a fee for the privileges. At present, India has huge foreign exchange reserves to cover up to 11 months of imports. As of March the 31st, 2024, the total gold held by the Reserve Bank was 822.10 metric tons as compared to 794.63 metric tons as of corresponding period. Vishalji, the crux and the pride of this story lies in the first line where it says it will now hold most of its gold in its own vault. So yet another benchmark of the fact that economically India has arrived.
Well, undoubtedly, Lalimaji, because we've come a long way from those events for the Indian economy when we had to send our gold, pledge our gold, in the early 90s.
Yes.
Of course, those were difficult times. Economic decisions were taken at that point in time whose benefits we reap. But then it was a tough situation for the Indian economy then. And from there onwards to this stage wherein we are now bringing back gold to our own vaults, holding most of it, and I would say a rough estimate would be somewhere around 60% of the entire kitty, more than 60% of the entire kitty would be in our own vaults. Now, more than anything, this holds a lot of, sentimental and psychological impact for Indians. That's one. But it's not just sentimental and psychological. It also shows the Indian economy's heft at the global level. And these are cues which are taken by other economies, by other markets as well, by other governments also when they decide on their policies. And when they sit across the table to negotiate several agreements with our representatives in our government.
भारत का दबदबा बढ़ रहा है
जी बिल्कुल बिल्कुल
इकोनॉमिक क्षेत्र में
बिल्कुल
Alright, let's move on. The RBI aspires to promote internationalization of the Indian rupee to facilitate bilateral trade in local currencies as a part of a strategic action plan. RBI yesterday allowed the opening of rupee accounts outside India. It quite validates. We just discussed rupee, the status of the Indian rupee earlier. Again, how would you explain this? That because it's great. It's great that we are now promoting internationalization of the Indian rupee. I think you can go to the to Paris and you can pay in the Indian rupee if you are in the leaning tower of.
Imagine Lalimaji. This all juxtaposed with the digital payment system. India's UPI, and this is something which has been lauded by governments and the leaders across the world. How countries are adopting it one by one now, be it Singapore, be it Sri Lanka, the representatives of various developed economies in India, the ambassadors and their leaders when they visit, in awe of how it functions. We read and hear stories from Indians who have settled abroad about how this is something which is very surprising to the developed economies and their constituents across. So combine that with the INR trade, the global stage at which Indian rupee also stands, the way it is facilitated, the entire ecosystem developing. And again, combine it with that story about India, RBI bringing back, its gold from the vault in England. So again, this puts in place a larger picture, wherein larger picture is pretty much clear that Indian economy has arrived on the global stage. It is a force to reckon with. We are doing all things you know, in tandem with all the policies in place as well. And we have a voice which has to be heard by the developed economies in various forums.
और चलते हैं एक और अच्छी खबर की तरफ. देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वास्तविक दर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8.2% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7% रही थी. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार वास्तविक जीडीपी यानी स्थायी मूल्यों पर आधारित जीडीपी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 173 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर रहने का आकलन किया गया है.
Right, a look at the US markets now. All three major US indices fell yesterday as the investors analyzed weaker than expected growth data and the drop in bond yield with the US dollar substantiate the fall. Nasdaq slipped 1%, Dow Jones Industrial Average declined 0.86% and S&P 500 down 0.76%. All this notwithstanding the high inflation in US, Vishalji?
Well, yes, as I was pointing out earlier, you know, you juxtapose again. Since most of the news items today deal with the fundamentals of Indian economy as well, and then we look at the international scenario, then we look at the numbers which come in from you know, these developed economies and their markets as well, and then we do a small juxtapose analysis, we find out that we're in a much better place. Again, look at the Indian GDP numbers and look at the inflation figures which are expected to come in from the US. Then look at the mood in the European markets, various European markets and other Asian markets as well. It clearly indicates that there is a lot of steam in the Indian economy. There is a lot of steam which is based on very strong fundamentals. And again, when I was talking about in the beginning of the show that looks like, you know, the negative cues from the international scenario doesn't seem to have much impact in the past few weeks. It's more about domestic aspects.
Right. A look at the oil prices now. Brent and WTI crude trading lower in the global crude market today. Brent crude decreased by 0.26% to $81.65 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI also decreased by 0.06% to $77.96 per barrel when reports last came in.
और कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के मूल्यों में आज मिलाजुला रुख रहा. जून के कारोबार के लिए सोना 0.23% की तेजी के साथ 72,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर जुलाई के कारोबार के लिए चांदी में 0.25% की गिरावट दर्ज की गई और उसका मूल्य 93,888 रुपये प्रति किलो पर चल रहा था. विशाल जी, क्या कहेंगे सोने और चांदी की जो कीमतें चल रही हैं उसको लेकर?
देखिए, सोना तो सीधे तौर पर एक हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किया जाता है और सोने के अगर रिटर्न की तरफ थोड़ा सा नजर डालें ऐतिहासिक रूप से भी तो कभी भी सोने में इन्वेस्टमेंट गलत नहीं मानी गई है और उसने हमेशा फायदा ही पहुंचाया है. जहां तक चांदी की बात करें तो चांदी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और शायद इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चांदी का जो उपयोग है एज ए मेटल कई टेक्नोलॉजीज में किस तरह से देखा जाए, कई इक्विपमेंट्स में उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है. लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा, कितने महीनों तक, कितने हफ्तों तक ये सस्टेन कर सकता है जो चांदी में बढ़ोतरी है, वो थोड़ा सा देखने लायक होगा. क्योंकि एक बार फिर अगर ऐतिहासिक डेटा की तरफ मैं लेके जाऊं तो चांदी में एक बार बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलती है लेकिन फिर उसके बाद लगभग 7-8 साल तक जो है वो एक फ्लैट अप्रोच उसमें दिखाई देती है. तो ये मोटे तौर पे एक नजरिया है सोने और चांदी के लिहाज से. अब उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि आने वाले हफ्तों में किस तरह से दोनों आगे बढ़ते हैं. सोने में तो बढ़ोतरी हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे केवल रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिहाज से भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है.
जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को अमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू लालिमा जी।
थैंक यू विशाल जी। एंड बिफोर वी क्लोज फ्रेंड्स, इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्स स्नैप 5 days लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स गेन्स 0.1%, निफ्टी एड्स नियरली 0.2%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग्स बैक 100 tons ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूकेज वॉल्ट, एंड रियल जीडीपी टू ग्रो बाय 8.2% इन 2023-24, सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation. And friends, with that we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor
Amrish Saxena,
signing off. Namaskar.